आज है 11 मार्च दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूँ सुशीला सिंह। विवादों के बीच दिल्ली में हुआ विश्व सांस्कृतिक उत्सव का आगाज।
किसी ने कहा ये गुरुजी का प्राइवेट पार्टी है, तो हमने कहा बिल्कुल, ताकि पूरा संसार मेरा परिवार है।
सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद पाकिस्तान ने किया अपनी क्रिकेट टीम के भारत आने का ऐलान। और आज विवेचना में बात करेंगे प्रमोद कपूर की गांधी पर आई नई किताब की।
तो इन्होंने देखा अपने कंपार्टमेंट से कि हरिलाल था वहाँ पर, तो उसको बुलाया गया, वहाँ गए ये। और जब तक ट्रेन चलने लगी तो संतरा जो है उन्होंने अपनी माँ को दिया और कहा कि ये इसको खाने मत देना, इसको मत खाने देना, आप खाना, आप खाना।
ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में यमुना किनारे आज से शुरू हुए श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पहुंच गए हैं। कार्यक्रम का आयोजन रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान कर रहा है। ये फेस्टिवल काफ़ी विवादों में रहा है। कार्यक्रम पर यमुना नदी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कार्यक्रम के आयोजकों को 5 करोड़ रुपये चुकाने के लिए कहा है। इस ताज़ा घटनाक्रम में आज NGT ने आर्ट ऑफ लिविंग को पैसे चुकाने के लिए 3 सप्ताह का वक्त और दे दिया है। विश्व T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की टीम भारत आएगी। पाकिस्तान की सरकार ने टीम को भारत जाने के लिए आज हरी झंडी दे दी है। इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि उसकी क्रिकेट टीम भारत तभी आएगी जब उसे सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच टूर्नामेंट का मैच पहले धर्मशाला में होना था, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद इस मैच को कोलकाता में शिफ्ट कर दिया गया। सीरिया में मुख्य विपक्षी दल ने कहा है कि वो सोमवार से जिनेवा में होने वाली शांति वार्ता में हिस्सा लेगा। इस साल की शुरुआत में ही सीरिया की सरकार और मुख्य विपक्षी दल के बीच शांति प्रक्रिया को लेकर ठंडी पड़ी बातचीत को शुरू करने के प्रयास शुरू हुए थे। सीरिया में अस्थायी युद्ध विराम पिछले महीने के आखिर में शुरू हुआ था, जिसमें इस्लामिक स्टेट और अलकायदा की सीरियाई शाखा को छोड़कर बाकी गुटों पर सीरिया और अन्य सहयोगी देशों की सेनाओं ने हमले रोक दिए हैं। इसराइली सुरक्षा बलों ने पश्चिमी तट पर एक फलिस्तीनी टीवी चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। चैनल पर हिंसा को भड़काने का आरोप है। रामल्ला स्थित चैनल के दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा बलों ने ट्रांसमीटर और अन्य तकनीक उपकरणों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसराइली सुरक्षा बलों ने फलिस्तीन पर एक इस्लामिक संगठन इस्लामिक जिहाद की तरफ से लड़ाई छेड़ने का आरोप लगाया है और कहा है कि फलस्तीन इस टीवी चैनल और इंटरनेट के जरिए इसराइल के खिलाफ हिंसा और नफरत भड़का रहा है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। चीन और रूस ने अमेरिका को आगाह किया है कि वो दक्षिण कोरिया में उन्नत मिसाइल तकनीक प्रणाली स्थापित करने की अपनी योजना छोड़ दे, क्योंकि इससे इस क्षेत्र में फिर से हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी। लेकिन अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच इस मिसाइल प्रणाली को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद ये बातचीत शुरू हुई है। रूस में रूसी विदेश मंत्री के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अमेरिका की इस योजना पर रूस और चीन की एक ही राय है। हमें लगता है कि दक्षिण कोरिया को जितनी सुरक्षा की ज़रूरत है उसके लिए इस मिसाइल प्रणाली की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्षेत्र में हथियारों का संतुलन बिगड़ेगा, जिससे जो किसी के हित में नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मार्को रूबियो ने इस्लाम पर अपनी ही पार्टी के अन्य उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बयान की आलोचना की है। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग के 3 दिनों तक चलने वाले विश्व सांस्कृतिक उत्सव का आज दिल्ली में आगाज हो गया। इस उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि पर्यावरणविदों के आरोपों के कारण ये कार्यक्रम विवादों में है। पर्यावरणविदों का आरोप है कि इस कार्यक्रम से इलाके के पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। हमारे साथ स्टूडियो में है विनीत खरे, जो इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। विनीत, तो आज कार्यक्रम शुरू हो ही गया आखिर?
कार्यक्रम शुरू हो गया है, लेकिन शुरुआत हुई भारी बारिश से, और जब बारिश हुई थी करीब 5 या 5:30 के आसपास, तो सभी जो विजुअल्स हमें नज़र आ रहे थे कि लोग सरों पर पॉलीथिन लेकर और बारिश से बचने की कोशिश कर रहे थे और लग रहा था कि कितनी देर में कार्यक्रम शुरू होगा। खासकर जो इलाका था वहाँ भारी ट्रैफिक जाम की खबरें आ रही थी। दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी निकाली थी कि भाई उस इलाके से, जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, वहाँ से लोग न जाएं। लेकिन आखिरकार कार्यक्रम शुरू हुआ और जब बारिश हुई तो लोग कैसे परेशान हो रहे थे, आइए एक क्लिप में सुनते हैं। ये आवाज़ थी कि जब भारी बारिश हो रही थी लोग किस तरह से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आखिरकार कार्यक्रम शुरू हुआ, काफ़ी लेट से शुरू हुआ और जो जिस संगीत को सुनने लोग आए थे, कार्यक्रम को सुनने आए थे, उसकी एक झलक हम आपको सुनवाते हैं। जैसा कि स्टेज पर दिख रहा है, हज़ारों की तादाद में लोग तबले बजा रहे हैं या फिर विभिन्न वाद्य यंत्र है वो बजा रहे हैं, कलाकार हैं वो आ रहे हैं, विभिन्न देशों के कलाकार आए हैं, करीब 150 देशों से जो विभिन्न डिग्निट्रीज़ आ रहे हैं वो एक के बाद एक भाषण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी उन्होंने बोलना नहीं शुरू किया है लेकिन श्री श्री रविशंकर ने थोड़ी देर पहले लोगों को संबोधित किया है और एक टिप्पणी उनकी सुनते हैं, जिस तरह से तन उन पर हुआ है इस कार्यक्रम पर, क्या कहना था उनका।
किसी ने कहा ये गुरुजी का प्राइवेट पार्टी है, तो हमने कहा बिल्कुल, ताकि पूरा संसार मेरा परिवार है। तो तब तो प्राइवेट पार्टी वो है सच बोल।
तो काफ़ी उत्सुक भी दिखाई दे रहे थे और अपनी टिप्पणी जो है, अपना वक्तव्य स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं ये जानना चाहेंगे आपसे विनीत कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है या NGT ने 5 करोड़ का फाइन जमा करने के लिए कहा था आर्ट ऑफ लिविंग पे, जिस पर श्री श्री तो बड़े अडिग दिख रहे हैं और ना कहा है कि नहीं भरेंगे, अब उसका क्या।
उन्होंने कहा है कि जेल जाएंगे लेकिन फाइन नहीं भरेंगे, जिस पर जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की तरफ से काफ़ी आपत्ति जताई गई इस वक्तव्य पे। पहले हुआ कि कल इनको देना था, कल से फिर आज फ्राइडे समय सीमा बढ़ाई गई, शुक्रवार को देना था। अब बात हुई है कि आप 25 लाख दे दें जिस पर मान गए हैं और बाकी के जो 4.5 करोड़ हैं वो बाद में दें। तो आखिरकार मामला सुलझ गया है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसा कि श्री श्री रविशंकर बार बार कह रहे थे कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और वो फाइन नहीं देंगे, लेकिन जो पर्यावरणविद हैं उनका कहना है कि 100 एकड़ में जो पूरा समारोह हो रहा है, 7 एकड़ लंबा जो स्टेज बना है वो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है
जी, काफ़ी नुकसानदेह है। और अभी भी हम देख सकते हैं कि ये समारोह चल रहा है, हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कोई भाषण वहां पर जाके नहीं दिया है, सभी लोग उनका
बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक भाषण नहीं
जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए विनीत खरे आपका।
वो अपने देवताओं के लिए रोते हैं।
मैं शिव शंकर भोलेनाथ का बाबा, भोलेनाथ का शंकर, इस बाबे का मैं अपनी जाल दे सकता हूँ, इस बाबे के लिए।
वो अपनी बिखरी धरोहर को सहेजना चाहते हैं।
इसका सारा जो ये मंदिर है ये सारा डैमेज हो गया था, फिर हमने हमारी संस्था ने।
वो याद करते हैं खौफ भरी रातों को।
अगर बिल्ली भी हमारे ऊपर वाली मंजिल में चल रही होती तो हमें ये लग रहा था कि आ गए वो मिलिटेंट, आ गए तो वो हमें मार डाल देंगे।
और जिन्होंने बंदूक उठाई।
भाई देखिए, मैं तो हर बच्चे से यही कहूंगा, भूल कर भी हथियार मत उठाना, क्योंकि हमने इस जहर को पिया हुआ है, मेरे बच्चों, हमने इस जहर को पिया हुआ है।
पोस्ट कार्ड अपनी धरती से उखड़े 5 कश्मीरी पंडितों के।
रक्त रंजित नृत्य करते हर गली चौराहे और सड़क पर लोग खेल खेल में इकट्ठा।
मैं खुद को अपने घर के बरामदे में तैरता सा देखता हूँ।
इनका भी कश्मीर, BBC हिंदी रेडियो की खास पेशकश, सोमवार 14 मार्च से रोजाना शाम 7:30 बजे दिन भर में और सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में।
काफ़ी दिनों की अनिश्चितता के बाद पाकिस्तान ने कहा है कि देश की क्रिकेट टीम ICC वर्ल्ड कप 2020 में भाग लेने के लिए भारत जाएगी। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि भारत की तरफ से सुरक्षा का आश्वासन मिलने के बाद इसके बारे में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सूचित किया गया और फिर प्रधानमंत्री ने टीम को भारत जाकर खेलने की अनुमति दी। इससे पहले भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भरोसा दिलाया था कि पाकिस्तान को अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस बारे में और जानकारी के लिए कराची फोन कर अब्दुल रशीद शकूर से बात की।
देखिए, काफी दिनों से बहुत ही बेयकीनी की सूरत हाल थी और समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट है वर्ल्ड T20 और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी टीम है, T20 की फॉर्मर चैंपियन है पाकिस्तान। तो उसको देखते हुए बड़ी अजीब बात मालूम होती थी कि अगर पाकिस्तान की टीम ये टूर्नामेंट में नहीं खेलती। सिक्योरिटी के कंसर्न थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो चीजें रखी थी कि पहले ये मैच धर्मशाला से कहीं और मुंतकिल किया जाए, शिफ्ट किया जाए, वो भारत ने जो है उसको शिफ्ट कर दिया था। फिर पाकिस्तान का ये मुकाबला था, डिमांड थी कि सिक्योरिटी की जो यकीन दहानी है, अश्योरेंस है, वो पब्लिक में आके कोई इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा वो कहे। तो आज ऐसा लग रहा था कि हर चीज जो है वो बड़ी तेजी से हुई है। भारत में जो भारतीय मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि हम भारतीय पाकिस्तान की टीम की सिक्योरिटी की जमानत देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल की जो हुकूमत है वहां की तरफ से जो है वो यकीन दहानी आ गई, वहां के पुलिस चीफ का आ गया। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोबारा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने कहा कि अब हर चीज जो है वो लग रहा है कि हर चीज सही उसको जारी है रास्ते पे, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान टीम को फिर भारत भेजा जाए। तो उसके बाद ही फिर गवर्नमेंट ने जो है वो क्लीयरेंस दे दी पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत जाए। तो अब हर चीज जो है जाहिर मामूल पर लग रही है और पाकिस्तान की टीम जो है वो अब भारत रवाना होने वाली है और भारत में दर्शक जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए से मुंतजर हैं कि वो आए और पाकिस्तान टीम को वहाँ खेलता हुआ वो देखें।
पाकिस्तान टीम के भारत आने को लेकर एक कंफ्यूजन, एक असमंजस की स्थिति थी। पाकिस्तान टीम अभी फाइनल हो चुका है कि भारत आ रही है, तो अब फैंस का क्या कहना है वहाँ पर?
और खुश हैं इसलिए कि ये बहुत अफसोस की बात होती है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड T20 में ना खेलती और इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो किसी भी ICC इवेंट का जो है उसकी एक चार्म है, उसकी एक खूबसूरती है। आप एशिया कप देख लें, आप वर्ल्ड कप देख लें, इसके अलावा आप किसी भी ऐसे इवेंट में जहाँ पे दोनों टीमें आती हैं, खेलती हैं, तो शायकीन जो चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों या कहीं और रहते हों, उनको पाक भारत क्रिकेट चाहिए। वो जो पॉलिटिक्स है उसको वो कभी लाइक नहीं करते, किसी वक्त किसी सूरत में उसको पसंद नहीं करते और उनका ये कहना है कि क्रिकेट को और पॉलिटिक्स को जो है अलग रखा जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जब भी खराब हुए हैं इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्रिकेट को ही होता है।
पाकिस्तान अपना पहला मैच 16 मार्च को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेलेगी और भारत और पाकिस्तान के बीच 19 मार्च को मैच खेला जाएगा। ये थे कराची से अब्दुल रशीद शकूर।
BBC इंडिया बोल।
क्या कॉर्पोरेट सेक्टर को सरकार की अंधाधुंध मदद से अर्थव्यवस्था का नुकसान हो रहा है? औद्योगिक घरानों को बिना जमानत अरबों रुपए का बैंक लोन, मगर कर्ज में डूबा किसान आत्महत्या पर मजबूर। हजारों करोड़ रुपए का कर्ज चुकता किए बिना उद्योगपति विजय माल्या को देश से बाहर जाने की छूट कैसे मिली? इस बार इंडिया बोल का यही है विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 12 मार्च शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 और 1811027001 पर।
BBC इंडिया बोल।
आप सुन रहे हैं दिन भर सुशीला सिंह के साथ और अब समय है विवेचना का। महात्मा गांधी पर अब तक सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, क्या उनके बारे में कुछ खोजा जाना या कहा जाना बाकी है? प्रमोद कपूर ने अपनी नई किताब गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी में यही कुछ करने की कोशिश की है और उसमें वो बहुत हद तक सफल भी हुए हैं, क्योंकि वो गांधी समग्र के 98 खंडों का अध्ययन करने के बाद कुछ ऐसी चीजें सामने लाए हैं जिनका जिक्र पूरे दूसरे लोगों ने करना उचित नहीं समझा। गांधी से जुड़े कुछ इन्हीं प्रसंगों पर रोशनी डाल रहे हैं रिहान फजल आज की विवेचना में।
फिर पूरन सा राज कनारा जाला हार पुकारा, आजादी का वीर सिपाही कभी नहीं मत हारा, फिर डांडी पर जाकर अपने हाथों नमक बनाया, सारे देश को सत्याग्रह का सुंदर सबक पढ़ाया, भारतवासी जपते थे फिर गांधी नाम की माला, 40 करोड़ दिलों में छाया एक लंगोटी वाला।
वैसे तो 20 का दशक आते आते गांधी पूरे भारत में मशहूर हो चुके थे, लेकिन दांडी यात्रा के अनोखेपन या कहें अलग अंदाज ने उन्हें पूरी दुनिया की आंखों में चढ़ा दिया। अंग्रेज सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर को गांधी ने दुनिया का सबसे अमानवीय कर करार दिया। उस समय भारत में एक मन यानी 38 किलो नमक की कीमत 10 पैसे हुआ करती थी। उस पर सरकार ने 20 आने यानी 2400% का कर लगाया। गांधी ने 241 किलोमीटर दूर दांडी जाकर नमक कानून तोड़ने का फैसला किया और अपने साथ जाने के लिए 79 कार्यकर्ताओं का चयन किया। गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक प्रमोद कपूर बताते हैं।
78 मार्चर्स थे जिसको गांधी जी ने एक एक का इंटरव्यू लिया था और खुद सेलेक्ट किया था। यंगेस्ट था कोई 16 साल का और गांधी जी ओल्डेस्ट थे। इन्होंने सबको अपने भाषण में जाने के पहले कहा था कि ये तैयार रहना कि जितने जा रहे हो उतने वापस नहीं आएंगे यहाँ पर। तो एक तो उसमें उन्होंने 79th मार्चर जो है वो खड़क बहादुर सिंह को लिया, जो कि एक मर्डरर था। लोगों ने मना भी किया गांधी जी को, तो जब गांधी जी ने जब पूरी बात सुनी उसकी कि किस कारण से उसने ये खून किया था, और तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने और वो 79th मार्चर बना। लेकिन उससे ज़्यादा एक जो बात मैं मुझे ज़्यादा दिल में लगी वो थी कस्तूरबा का रोल, उनकी बेटे की। उन्हीं दिनों साउथ अफ्रीका से आए थे वो लोग, जो मनीलाल जा रहे थे सत्याग्रह में एज अ मार्चर, तो उनकी वाइफ जो थी उन्होंने जब उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल रोने लगी। ये इतना इमोशनल सा कुछ वहाँ हो गया कि बा ने कंट्रोल लेना शुरू किया। उन्होंने एक रोली ली और उसमें घी डाला और सबसे पहले तो गांधी जी को लगाया और जितने भी 78 मार्चर से सबके सिर पर तिलक लगाया और ये कहा कि तुम सब हमारे बच्चे हो, खाली यही हमारा बच्चा नहीं है। और तीसरा तो आप हम सबको पता है कि कैसे धरसाना में वो पिटाई हुई थी बेचारों की सबकी, और गांधी जी ने कहा था कोई हाथ नहीं उठाएगा और चुपचाप एक एक कतार में जा रहे थे, एक एक कतार में मारा गया।
इस यात्रा में गांधी जी के लिए एक घोड़े का भी इंतजाम किया गया था, लेकिन वो उस पर कभी नहीं बैठे। गांधी ने कहा उनके लिए दिन में 24 किलोमीटर चलना, वो भी बिना किसी सामान के, बच्चों का खेल है। इस यात्रा के दौरान गांधी के पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उन्होंने चलने के लिए पालकी या घोड़े का सहारा नहीं लिया। यूं तो गांधी ने 1906 में जब वो 37 साल के थे ब्रह्मचर्य अपना लिया था, लेकिन उसके बाद एक मौका आया था जब वो थोड़ा डगमगाए थे और रवींद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी के लिए उनके मन में कोमल भावनाएं पैदा हो गई थी।
इन्होंने मार्गरेट सैंगर जो कि एक एक्टिविस्ट थी न्यूयॉर्क में, बर्थ कंट्रोल की एक्टिविस्ट थी, उन्होंने इनका एक इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में इन्होंने बड़े दो दिन का इंटरव्यू था, पूरा दिल खोल के बात की और इनफैक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ उनको कि वो बीमार पड़ गए, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था गांधी जी को बॉम्बे में। उस इंटरव्यू में इन्होंने एक चीज़ कही कि जब वो 50 साल के थे तो ही सेड ही नियरली स्लिप्ड एंड डिस्ट्रॉयड हिज मैरिज। और मैंने इसमें बड़े डिटेल में आउटलुक मैगजीन में लिखा था कि ये वो थी सरला देवी चौधरानी। अब जो लिखा गया है वो हम पढ़ रहे हैं, अब ये कोई ये, लेकिन जिस तरह का डिस्क्रिप्शन है और जिस तरह का एक्सचेंज ऑफ लेटर है उससे लगता है कि बड़ा पास तक आ गए थे ये। अब ये पता नहीं कि वेदर ही स्लेप्ट विद हर और नॉट, आई कांट से।
मैंने महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी से संपर्क कर पूछा कि गांधी जी और सरला देवी के बारे में कही गई इन बातों के बारे में कितनी सच्चाई है।
सरला देवी बंगाल की थी लेकिन उनकी शादी लाहौर में हुई थी पंजाब में, और वो एक कवि भी थी, वो कविताएं लिखती थी और वो भाषण अच्छा तेजी से देती थी, और चरखा को उन्होंने अपनाया, खादी को उन्होंने अपनाया। उनके कई ऐसे गुण थे जिससे भी गांधी जी बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने स्नेह दिया गांधी जी को। तो ऐसा था ना कि गांधी जी तो सबको अपना स्नेह देते थे, उनको स्नेह देने वाले इतने लोग नहीं थे। सरदार जी के साथ गांधी जी का बहुत निकट का रिश्ता हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने लगा कि ये रिश्ता अगर बहुत जारी रखा जाए तो इससे और तकलीफें हो सकती हैं। 5-6 महीने तक वो रिश्ता चला, उसके बाद उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया।
कस्तूरबा को इसकी जानकारी थी, वो इस रिश्ते
के बारे में अब जानकारी कब मिली? बाद में तो जरूर थी, क्योंकि गांधी जी ने तो उसके बारे में लिखा और पब्लिकली भी बात की, और गांधी जी के पुत्र जो थे मेरे पिताजी, उनको भी अच्छी जानकारी थी, महादेव देसाई को जानकारी थी, मेरे नाना राजा जी को जानकारी थी उसकी, और वो आश्रम में आकर भी रही थी, जब कस्तूरबा भी वहां थी, वो तो स्पष्ट था कि वो गांधी जी और सरदा देवी के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती का रिश्ता था, ये तो कस्तूरबा को अच्छी तरह से मालूम था।
इस सब के बावजूद प्रोफेसर पुष्पेश पंत कहते हैं कि प्रमोद कपूर ने गांधी के बारे में सनसनी फैलाने वाले तथ्यों को ज्यादा महत्व नहीं दिया है।
जो सेंसेशनल चीजें थी उसको उन्होंने उतनी तवज्जो नहीं दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गांधी के प्रयोग ब्रह्मचर्य के साथ थे उनकी बात तो बरसों से हो रही है, जो गांधी के रिश्ते एक समलैंगिक प्रेम के कटनबाख के संग थे उसका भी जिक्र तभी जुबान में लोगों ने किया है। तो गांधी इस ट्रूथ एरिक एरिक्सन से लेके उनके एक्सपेरिमेंट्स विद ब्रह्मचर्य से लेके, अब मजे की बात है कि गांधी की ऑटोबायोग्राफीज तो 30s के पहले छप चुकी थी, और उसके बाद गांधी जी ने कहा मेरी जिंदगी मेरा संदेश है, और उसके बाद इस कदर गांधी पे लिखा गया है और इस कदर गांधी को फोटोग्राफ किया गया है कि वो मार्गरेट बुर्क व्हाइट हो या कोई और हो, तो वो दस्तावेजी गांधी, और एक पीढ़ी को तो गांधी सिर्फ अटनबरो ही समझ में आता है। अब इसके बाद आप देखिए तो लोग हैं जिन्होंने गांधी बिफोर इंडिया भी लिखा है राम गुहा ने, और इंडिया आफ्टर गांधी भी लिखा है, तो वो जो चुस्त जुमलेबाजी सिर्फ बेचारे बीजेपी वाले इलेक्शन में नहीं करते, गांधी स्कॉलर भी करते हैं। तो वो जो कहानी है कि हिंदुस्तान में गांधी बापू हैं, ज़रा उनकी शान के खिलाफ कुछ कह दीजिए, जैसा बेचारी कबीर बेदी की बेटी ने कहा तो आप लाइन हाजिर हो जाते हैं। तो एक तरह से गांधी होलिकाऊ भी हैं, एक तरह से गांधी एक ऐसा भगवान है जिसके मंदिर पे पूजा पाठ आप कर लीजिए, मगर जिंदगी से आपका वास्ता उस आदमी से कोई नहीं है। बापू की समाधि पे आदमी हर मिजाज का अनशन भी करेगा, फोटो ऑप भी करवाएगा, मगर कुल मिला के गांधी की रिलेवेंस इस देश में इस वक्त क्या है, ये सोचने को ये किताब मजबूर इसलिए करती है। आप पन्ने पलटें, आप न पढ़ें, कोई एक तस्वीर होगी जिस पर आपकी आंखें अटक जाएंगी, कोई चार अल्फाज होंगे जो आपको सोचने को मजबूर करेंगे कि ये शायद मुझसे छूट गया था, और ये मुझे फिर आपको मजबूर करेगा अगला सफा पलटने के लिए।
प्रमोद कपूर एक किस्सा और बताते हैं। जब 1916 में महात्मा गांधी बनारस गए और उन्होंने हिंदू कॉलेज में दिए अपने भाषण में वहां मौजूद राजा महाराजाओं को आड़े हाथों लेना शुरू किया, सारे महाराजा वहां से वॉकआउट कर गए। एनी बेसेंट ने गांधी से अपना भाषण रोकने के लिए कहा और मदन मोहन मालवीय महाराजाओं को मनाने उनके पीछे दौड़े।
7 दिन का फंक्शन था, इसमें दूसरे दिन बुलाया गया गांधी जी को। गांधी जी पहले तो काशी विश्वनाथ मंदिर वगैरह के चारों तरफ देख गए, बड़ी गंदगी दिखाई दी बनारस में उनको, और सिक्योरिटी बहुत थी, तो उनको जब मौका दिया बोलने का तो उन्होंने पहली बात कही गंदगी की बात बताई कि भाई बनारस में क्यों लोग साफ नहीं रखते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये महाराजा लोग बैठे हैं यहाँ पर और ये जवाहरात और इस सब से लदे हुए हैं, एक गरीब देश में ये शोभा नहीं देता कि आज यूनिवर्सिटी खुल रही है और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा काम हो रहा है उसमें इस तरह से ये आए हैं। और ये बोलते रहे करीब 15-20 मिनट तक, तब एनी बेसेंट उठी और उन्होंने कहा स्टॉप मिस्टर गांधी, स्टॉप नाउ। तो देखा कि धीरे धीरे जितने महाराजा थे एक एक उठ के सब जाने लगे। मालवीय जी उनके पीछे भागे कि नहीं नहीं महाराज बुला दी, आइए वापस, इनको चुप करा दिया गया है, आप आ जाइए वापस, लेकिन तब तक भंग हो गई थी सभा इनकी।
प्रमोद कपूर की किताब का सबसे मार्मिक पक्ष है वो गांधी और उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल के संबंधों का जिक्र करते हैं। हरिलाल अपने पिता से नाराज थे, इसलिए उन्होंने उनका घर छोड़ दिया था। एक बार उन्हें पता चला कि गांधी और कस्तूरबा की ट्रेन मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन से गुजरने वाली है, वो वहां पहुंच गए। वहां हर कोई महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रहा था, उन्होंने कस्तूरबा गांधी की जय का नारा लगाया, तब सबकी निगाहें उनके ऊपर गईं।
इनको पता लगा हरिलाल को कि कटनी जंक्शन से गांधी जी और कस्तूरबा पास कर रहे हो, तो ये बुरी कंडीशन में थे जरूर, मतलब ड्रंक थे, और उन्होंने वहाँ नारे लगाना शुरू किया, कस्तूरबा माँ की जय, कस्तूरबा माँ की जय। तो लोगों ने देखा कि ये कौन आदमी है भाई, कि ये सब लोग तो महात्मा गांधी की जय कर रहे हैं, एक को पीछे से चिल्ला रहा है। तो इन्होंने देखा अपने कंपार्टमेंट से कि हरिलाल था वहाँ पर, तो उसको बुलाया गया, वहाँ गए हुए, और तब तक ट्रेन चलने लगी तो संतरा जो है उन्होंने अपनी माँ को दिया और कहा कि ये इसको खाने मत देना, इसको मत खाने देना, आप खाना, आप खाना।
महात्मा गांधी की हत्या से 2 दिन पहले इंदिरा गांधी अपने 4 साल के बेटे राजीव गांधी और अपनी बुआ कृष्णा हटी सिंह के साथ उनसे मिलने बिरला हाउस गई थी।
जब इन्होंने देखा इन लेडीज़ को आते हुए, कहा कि प्रिंसेस आई हैं हमसे तो मिलने, तो उधर ये छोटे राजीव जो थे इन्होंने फूल जो है उनकी अंगूठों में और पैर में लगाना शुरू किया, पैर की उंगलियों में, तो उन्होंने उसका कान खींचा और कहा कि पता है कि ये सब काम किया जाता है, हम खाली मरे हुए लोगों पर लगाया जाता है, ये हम एक जिंदा आदमी पर नहीं लगाया जाता है। फोटोग्राफर दो मिलने आए थे, एक दिन आई थी वो मार्गरेट बॉकवाइट, दूसरे दिन आए थे हेनरी कार्टियर-ब्रेसों, और दोनों से यही अपनी डेथ की बात करते थे। तो उनको कुछ एक क्या कहें, वो प्रिनोमिनेशन उनको हो गया था कि अब रहेंगे नहीं वो।
जब गांधी की शव यात्रा का इंतजाम किया जा रहा था तो बदहवास और किसी दूसरी दुनिया में खोए नेहरू ने माउंटबेटन से कहा था, चलिए बापू से ही पूछिए क्या कुछ किया जाना है। गांधी के शव के सामने उनकी भतीजी मनु उनका प्रिय भजन गा रही थी। तभी नेहरू उनके पास आकर बोले, और जोर से गाओ, क्या पता बापू जाग जाए।
वैष्णव जन तो तेरे रे कहिए जे, पीर पराई जा
बिल्कुल ही अपने आप को खो दिया था, उन्होंने विश्वास नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ होगा। जब वो भजन चल रहा था तो उन्होंने कहा कि जरा तेजी से गाओ, क्या पता बापू उठ जाए।
31 जनवरी 1948 को जब गांधी की चिता को उनके बेटे देवदास गांधी ने आग दी तो उसका आंखों देखा हाल सुना रहे मेलविल डिमेलो का गला रुन गया। बाद में उन्होंने लिखा,
मैं कमेंट्री समाप्त हो जाने के बाद भी उस वैन की छत पर बैठा रहा जहां से मैं कमेंट्री कर रहा था। अचानक मुझे नीचे से वैन के हुड को पकड़ने की कोशिश करते दो हाथ दिखाई दिए। मैंने गौर से देखा तो वो पंडित नेहरू थे। मैंने उनके हाथों को पकड़कर वैन की छत पर खींच लिया। उन्होंने छूटते ही कहा, तुमने गवर्नर जनरल को देखा है? मैंने जवाब दिया, वो तो आधे घंटे पहले गए। उनका दूसरा सवाल था, सरदार पटेल दिखाई दिए? मैंने कहा, वो भी कुछ मिनटों पहले जा चुके हैं। मैंने महसूस किया कि दुख की इस घड़ी में दोस्त दोस्तों से बिछड़ गए थे।
जिसने यही बताया जब तक हो जग में, सब मिलजुल कर रहो, प्रेम के साथ रहो। अब भी सच है जो गांधी ने वचन कहे, अमर रहे गांधी की।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
आप रेहान फजल की विवेचना सुबह विश्व भारती में 8 बजे दोबारा सुन सकते हैं और अपनी सुविधानुसार bbchindi.com पर भी पढ़ सकते हैं। और अब खेल समाचार। हमारे साथ लाइव स्टूडियो में हैं आदेश कुमार गुप्त। खेल समाचारों के लिए आज क्या खास है?
जी देखिए, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो धर्मशाला में विश्व कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के जो क्वालिफायर मुकाबले खेले जा रहे हैं उनमें पहला मुकाबला नीदरलैंड्स और ओमान के बीच होना था, ये मैच भारी बारिश की भेंट चढ़ गया। दूसरी तरफ ग्रुप ए में ही बांग्लादेश और आयरलैंड आमने सामने हैं। ताज़ा समाचार मिलने तक बारिश तो रुकी हुई है, कवर्स को हटाया गया है लेकिन अभी तक टॉस नहीं हुआ है और अब ये देखना कि ग्राउंड्समैन किस तरह का काम करते हैं, क्योंकि अगर विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट की बात की जाए तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे हालात देखने को मिल सकते हैं अगर बारिश हो तो। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के लिए ये एक और टेस्टिंग टाइम है। इससे पहले आपको मालूम ही है कि हिमाचल प्रदेश से वो मुकाबला छिन गया है जिसका सबको इंतज़ार था, भारत और पाकिस्तान का। दूसरी तरफ आज ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की चुनौती केवल साइना नेहवाल ही पेश करेंगी क्योंकि जो बाकी खिलाड़ी हैं वो सब हार कर बाहर हो गए हैं। दूसरी वरीयता हासिल साइना नेहवाल आज क्वार्टर फाइनल में चीन ताइपे की ताई जू जिंग से सामना करेंगी। इससे पहले कल पुरुष एकल वर्ग में समीर वर्मा, बी साई प्रणीत और के श्रीकांत अपने अपने मुकाबले हार गए और साइना नेहवाल के बारे में अब पता चलेगा कि उनकी फिटनेस कैसी है, क्योंकि पिछली बार वो ऑल इंग्लैंड के फाइनल में पहुंची थी लेकिन पिछले दिनों उन्होंने लगातार 3 टूर्नामेंट अपने फिटनेस के कारण मिस किए थे।
जी, खेल समाचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में यमुना किनारे आज से शुरू हुए श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पहुंचे। विश्व विश्व T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान की टीम भारत आएगी। पाकिस्तान की सरकार ने टीम को भारत जाने के लिए आज हरी झंडी दे दी है। सीरिया में मुख्य विपक्षी दल ने कहा है कि वो सोमवार से जिनेवा में होने वाली शांति वार्ता में हिस्सा लेगा। इसराइली सुरक्षा बलों ने पश्चिमी तट पर एक फलस्तीनी टीवी चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी है। चैनल पर हिंसा को भड़काने का आरोप है। चीन और रूस ने अमेरिका को आगाह किया है कि वो दक्षिण कोरिया में उन्नत मिसाइल तकनीकी प्रणाली करने की अपनी योजना छोड़ दे। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे प्रभात पांडे। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।